मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 6 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबका हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं उन 4 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अंकित, आपका गांव है दीघल, जिला झज्जर हरियाणा, अक्षय कुमार, आप पटना बिहार से हैं, शिवांगी द्विवेदी, आप रीवा मध्य प्रदेश से हैं और सुमन कुमारी, आप भटौनी बिहार से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स पर कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन आइए उसके बारे में चर्चा बेहतर होगा कि हम बाद में करें। शुरू में जो एक दो दूसरी खबरें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। उड़ीसा में अभी जो तूफान आया वो तूफान लगभग अब गुजर गया है और पुनर्वास की स्थिति शुरू हो गई है। ये जो तूफान आया था ये बहुत जबरदस्त था और इसमें बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी, लेकिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जितनी हो सकती थी, अब ऐसा तो नहीं है कि वो तबाही बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, प्राकृतिक रूप से जो तबाहियां होनी होंगी वो तो होंगी ही। आप हवा की रफ्तार को अगर नहीं रोक सकते हैं तो मकान टूटेंगे, संपत्तियां बर्बाद होंगी, पेड़ टूटेंगे, ये सब चीजें तो होंगी, इसे तो आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी जो तबाही जिसे रोका जाना चाहिए वो होता है जान माल की हानि। कि कैसे हम, सबसे बड़ी बात तो है कि कैसे हम व्यक्तियों और पशुओं को मृत्यु के गाल में समाते हुए बचा सकते हैं और जो संपत्ति है कैसे उसकी थोड़ी बहुत रक्षा कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो प्राकृतिक आपदा आई, इसको आप कह सकते हैं ये जो बहुत भयानक प्राकृतिक आपदा थी, इसको भारत ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। आप देख रहे थे कि इस पर बकायदे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग हो रही थी, फिर चीफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में मीटिंग हो रही थी, फिर स्टेट में बकायदे चीफ सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे थे, चीफ मिनिस्टर देख रहे थे, ये सारी बातें आपने अखबारों में पढ़ी हैं। और नतीजा ये हुआ कि देखिए, बहुत कम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जीवन की हानि नहीं हुई, कुछ लोगों की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई, लेकिन घटना दुर्घटना इतनी बड़ी होती है कि आप उसे शून्य पर शायद ना पहुंचा सकते हो। बेहतर होता कि हम शून्य पर पहुंच पाते। इसके बावजूद जो व्यवस्था की गई उसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है कि भारत ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। दोस्तों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपके सिलेबस में है और हर साल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस बात की चर्चा मैंने पहले की थी। यहां मैं दूसरे संदर्भ में इसकी चर्चा कर रहा हूं। चर्चा इस संदर्भ में कर रहा हूं कि जो ये घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह से इसको मैनेज किया है उसे आपको चाहिए कि आप एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ें। ये केवल आपके लिए न्यूज नहीं है, जो आपके लिए यानी कि वे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो देखें कि कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक व्यवस्थाएं की गई, कैसे लोगों को खाली कराया गया, कैसे आर्मी को बुलाया गया, कैसे वहां एनजीओ को सतर्क किया गया, कैसे बिजलियां पहले से काट दी गई, कैसे उन तक भोजन पहुंचाया गया, उनका पुनर्स्थापन कैसे किया गया। इन सब चीजों को आप बारीकियों से देखिए और सिलसिलेवार देखिए, स्टेज बाय स्टेज देखिए। एक साथ जंप अप करके पढ़ने की चीज नहीं है कि ठीक है आगे पीछे कर लिए, नहीं, स्टेज बाय स्टेज देखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अपने जनरल स्टडीज मेंस का 4th पेपर देखेंगे तो उसमें केस स्टडीज आते हैं और लगभग 125 नंबर के केस स्टडीज पूछे जाते हैं। यह इतना खूबसूरत हिस्सा होता है कि अगर आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके सफलता की परिभाषा को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकता है केस स्टडी। सवाल यह है कि ये केस स्टडीज आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। तो यहां जो मैं आपसे सिलसिलेवार इसके बारे में पढ़ने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि देखिए, आप जब करेंगे तब करेंगे, आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब ये सब करेंगे, अभी तो आपके पास इसका कोई अनुभव है नहीं, लेने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे। हम कर केवल यही सकते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो उनको बहुत ध्यान से और बड़ी बारीकी से उनको पढ़ें और उनको अपने अंदर समाने की कोशिश करें, एज इफ, ये मानकर कि मैं ही अभी मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं और मुझे सब कुछ मैनेज करना है। तब आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें हैंडल की जाती हैं और जब आप ये समझेंगे तभी आप केस स्टडी के साथ जस्टिस कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर आप अपने मन से कुछ भी लिखते चले जाएंगे और पता लगा कि आप तो सही तरीके से लिख रहे हैं, आपके लिहाज से तो वो चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हैं और सिस्टमेटिक चल सब चीजें हो रही हैं और उससे समस्या का समाधान भी हो जाएगा, लेकिन इनफैक्ट व्यवहार में वो लाया ही नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये एक मैसेज मैं आपको खासकर देना चाह रहा था। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, वो है काबुल में जो शांति के लिए कोशिश हो रही है उस पर। देखिए, कोशिश हो रही है काबुल में, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। काबुल में शांति का मतलब है अफगानिस्तान में शांति के प्रयास। जब हम अफगानिस्तान में शांति के प्रयास करते हैं तो आपको मालूम है कि सीधे भारत से ये मामला जुड़ा हुआ है। आप एकदम स्ट्रेट न कहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पड़ोसी के पड़ोसी पड़ोसी का पड़ोसी देश है। और अफगानिस्तान की जो घटनाएं होती हैं, खासकर इस तरह की अगर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या वहां सरकार इनस्टेबल है, अस्थायी है, सरकार के सामने कोई संकट पैदा हुआ है, तो भारत इस मायने में तुरंत सतर्क हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़े, उसके कहीं छींटे भारत पर भी आए। और अतीत हमें इस बात की गवाही भी देता रहता है कि हां ऐसा हुआ है। तो अफगानिस्तान, आप यूं कह लीजिए कि अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटती हैं, भारत उनके बारे में हमेशा कंसर्न रहता है। तो एक अच्छी बात यह है कि वहां एक धार्मिक नेताओं का एक समूह है जिसका नाम है लोया जिरगा। यह नाम आपको याद रहना चाहिए, लोया जिरगा। कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उनकी अभी बैठक चल रही है और उस बैठक में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। ये जो लोया जिरगा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यूएनओ से डिमांड की है कि तालिबान, जिसे वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, उसको प्रतिबंधित सूची से हटा दिया जाए। ये उनकी पहली मांग है। देखिए, तालिबान आप जानते हैं कि वो बहुत जबरदस्त आतंकवादी संगठन है जो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हावी है, और इतना हावी है आप समझिए कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको वो राष्ट्रपति ही नहीं मानता। और वो इसलिए राष्ट्रपति नहीं मानता, उसका कहना है कि ये जो हमारे यहां की जो सरकार है, काबुल की सरकार, ये बेसिकली अमरीकी परस्त है, अमेरिका की कठपुतली है। और दूसरी उनकी मांग ये भी है कि अमेरिका से जल्दी से, अमेरिका की जो सेनाएं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो जल्दी से जल्दी वापस लौट जाए, फिर शांति की स्थिति बनेगी। दोस्तों, पिछले 18 साल से अफगानिस्तान जबरदस्त रूप से इस तरह की घटना संघर्ष को झेल रहा है, और खासकर अब जबकि श्रीलंका में एक बार फिर से तबाही हमें देखने को मिल रही है और इसका बकायदे जो जिम्मेदारी ली है, आपको मालूम है कि आईएसआईएस ने ली है, और उसने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि हमने इसलिए श्रीलंका में विस्फोट किया है क्योंकि सीरिया जो हमारा केंद्र था उसे तबाह कर दिया गया है, तो हम उसका बदला ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी बकायदे घोषणा की है कि हमारे जो आतंकवादी संगठन है अफ्रीका और एशिया में मौजूद हैं और वो बड़े से बड़ा नरसंहार करने की क्षमता रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। अफगानिस्तान में जब भी कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और उसे ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में आपको गरीबी के उन्मूलन की दिशा में एक कदम आर्टिकल मिलेगा, और गरीबी आप जानते हैं कि बहुत ही स्थायी विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसे आप ध्यान से पढ़ें। यह हिंदू में पहले छपा था, उसका हिंदी वर्जन आपकी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जिसका शीर्षक है, टाइटल है कह लीजिए, कैटास्फोर ब्रांड। बेसिकली कैटास्फ्रो होता क्या है, इसकी स्पेलिंग है CATASTROPHE, कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा, दुर्घटना, विनाश, इसका मतलब होता है कैटेस्ट्रोफ। बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक एडिटोरियल कमेंट भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे उड़ीसा में जो अभी विपदा आई थी उसके संदर्भ में लिखा है। उन्होंने दो प्रश्न उठाए हैं इस एडिटोरियल कमेंट में। पहला तो यह है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया गया, लेकिन इसके लिए जो फंड होना चाहिए उसकी पहले से व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी ऐसा होगा तो यहां से उसे फंड रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब एक अलग से ऐसा कोई फंड तैयार किया जाए। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने बताया कि बकायदे जो हमारे जो एक कमीशन होते हैं, फाइनेंस कमीशन, उनके सामने ये इश्यू आया भी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो कही है कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स को लेकर कि भारत में भी इस तरह के बॉन्ड दिए जा सकते हैं। बेसिकली ये बॉन्ड क्या है, 1995 के आसपास जब हरिकेन्स एंड्रू आया था और नॉर्थरिज भूकंप आया, मतलब यू कह लीजिए कि भूकंप और तूफान आए थे, तो उस समय ये बॉन्ड जारी किए गए। आपातकालीन बॉन्ड कहना तो ठीक नहीं होगा, आपदा प्रबंधन से संबंधित बॉन्ड ये आप कह सकते हैं। देखिए अगर बहुत ही सरल भाषा में हम कहें तो आप जानते हैं बॉन्ड जिसको आप सिक्योरिटी कह लीजिए, प्रतिभूति होते हैं, आप मार्केट से खरीद लीजिए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रतिभूतियां होती हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की प्रतिभूतियां होती हैं जो बकायदे वो इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से बेचती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कैटास्ट्रोफ बॉन्ड खरीद लिया, मतलब मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, इसके साथ जो शर्त होती है कि ये बॉन्ड पूरी तरह से आप यूं कह लीजिए कि दुर्घटनाओं से लिंक्ड होते हैं, रिस्क से लिंक्ड होते हैं, कहिए दुर्घटना शब्द सही है, रिस्क से लिंक्ड होते हैं, जोखिम से लिंक्ड होते हैं, इनका समय बहुत छोटा होता है, 3 साल या 3 साल से कम। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपए का बॉन्ड आज खरीद लिया और उसमें यह होगा कि अगर 3 साल तक कोई आपदा नहीं आई, बकायदे उसकी डिटेल्स होंगी, कोई आपदा नहीं आया तो आपको इस 10,000 रुपए के बदले में इतने हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई घटना घट गई, कोई आपदा आ गई, तब फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है। और ये बॉन्ड जो मैंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन मतलब इश्यू करती है, उसका कारण यह है कि देखिए इंश्योरेंस तो आजकल हर चीज के होने लगे हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां लगातार भूकंप बाढ़ तूफान ये सब आते रहते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी के सामने संकट ये होता है कि वो चीजों के इंश्योरेंस तो कर रही है लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाए तो जितना वो प्रीमियम लेती है उस प्रीमियम से वो भुगतान नहीं कर सकती, तो फिर वो क्या करे। तो सच बात यह है कि वह इस तरह के बॉन्ड जारी करके अपने रिस्क के कुछ हिस्से को दूसरों को सौंप देती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को सौंप देती है। जैसे मैंने अगर 10,000 रुपए लगाए हैं तो एक यूं कह लीजिए कि मैंने 10,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं। मित्रों मैंने इस विषय को क्यों चुना है आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपके अलग से मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन तो है। तो आपदा प्रबंधन के बारे में जब आप कोई उपाय सुझाएंगे कि क्या क्या किया जाना चाहिए, तो बकायदे दो उपाय मैंने बता दिए। एक तो यह है कि इसके लिए बकायदे पहले से व्यवस्था की जाए, कोष की व्यवस्था की जाए, राइट। दूसरा यह है कि इस तरह के कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स जारी किए जाएं, और यह कोई नई चीज नहीं होगी, अभी इसे 25 साल पहले ऑलरेडी इसे जारी किया, 25 साल पहले से जारी किया जा रहा है, तो एक नई बात होगी और वो एग्जामिनर को डेफिनेटली अपील करेगी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 4 दोस्तों के नाम हैं बैजनाथ प्रसाद साहू, राहुल राय, वसीम हैदर और अतुल चौहान। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।